ओम शांति। अव्यक्त वाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 21वां पॉइंट है, शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं, तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे, वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठता है। बाबा कहते हैं, शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। जितनी शिक्षाएं बच्चों को देनी थी बाप ने दे दी। शिक्षा क्या है? तुम आत्मा हो, निराकार सितारा हो, गुण शक्तियों के साथ, मन बुद्धि संस्कार के साथ हूँ। पहली शिक्षा, मैं परमात्मा हूँ, निराकार रूप, बिंदी स्वरूप। ये जो कुछ हो रहा है ड्रामा है, ड्रामानुसार हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, जो उसके अंदर नोंद है। अब संगम का समय है, 84 जन्म पूरे होने आए। अब बाप को याद करो और अपने 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करो। राजयोग में आगे बढ़ो। संगम बाप के साथ जीने का समय है, जीने का युग है, भाग्य से मिला है, बाप के साथ जियो और आगे बढ़ो। क्या शिक्षा है, क्या कोर्स है? इतना आसान है? बाप की श्रीमत पर चलो, धारणाएं धारण करो और तुम निमित्त विश्व सेवाधारी हो, अपना विश्व कल्याण का कार्य करो। कितनी आसान शिक्षाएं दी है बाबा ने, कितना आसान कोर्स है। इसमें क्या दिमाग लगाना है? इतने सहज शब्दों में बाबा ने कोर्स पूरा कर लिया, ज्ञान पूरा कर लिया। अभी क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं। पर बच्चे उसे धारण करें। क्या बच्चों ने पहली शिक्षा धारण की है? हम आत्मा हैं। और अगर की है तो कितने समय के लिए की है? कुछ समय के लिए तुम अपने आप को आत्मा समझते हो या सदा काल के लिए तुम आत्मा हो? तुम अपने से पूछो। समझ की बात है। रामानुसार जिसका पार्ट मेंटली रिटायर्ड पर्सन का है, वो थोड़े समय के लिए अच्छी एक्टिविटी करें, भलाई की बातें करें, चंगाई की बातें करें, तो उसे सयाना नहीं कहा जाता, क्योंकि थोड़े समय के लिए वो बातें कर रहा है। वो मेंटली रिटायर्ड ही रहेगा जब तक पूरे समय के लिए सही बातें नहीं करता। समझ की बात है। उसी प्रकार थोड़े समय के लिए तुम आत्मिक स्थिति में रहो तो तुम अपने आप को आत्मा नहीं कह सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम आत्मिक स्थिति में हो, तुम में और उस पर्सन में कोई अंतर नहीं है, बस किसी और बात के कारण वो रिटायर्ड हो चुका है मेंटली। तुम सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हो चुके हो। अंतर कुछ नहीं दोनों में, दोनों एक समान हैं। दोनों भी जब अपनी स्थिति में होते हैं, बहुत बड़ी विकास की बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कहते हैं, दोनों भी, एक आध्यात्मिक, दूसरा जो दवा खाने में पड़ा है। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। तो पहला पाठ कितना पक्का किया है कि तुम आत्मा हो, कम से कम 8 घंटा, 8 घंटे से ऊपर अगर तुम कर पाते हो तो तुम मनुष्य की कैटेगरी में आते हो, ध्यान रखना। 8 घंटे और 8 घंटे से ऊपर अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हो तो तुम मनुष्य की कैटेगरी में हो। यात्रा अभी बाकी है। बारह घंटे से ऊपर अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हो तो ब्राह्मण की कैटेगरी में आओगे। बाबा जो कहता है ना, संगम युगी ब्राह्मण। समझ की बातें हैं सारी। 16 घंटे से ऊपर अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हो तो संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण की कैटेगरी में आ सकते हो। 8 घंटे से नीचे बाबा कहते मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। मैं कोई बात करूं तुम्हें दुख लगे, इससे अच्छा नीचे मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। तुम समझ जाओ। उदाहरण तो दिया है पहला ही, एक हॉस्पिटल का पर्सन और दूसरे तुम। तुम समझ जाओ तुम कहां पर हो। वो व्यक्ति भी 8 घंटा और 8 घंटे से ऊपर अगर अच्छी बातें करने लगे, सयानी बातें करने लगे, तो ये माना जा सकता है कि ये 50% ठीक हो चुका है। 12 घंटे से ऊपर अगर बातें करे, आधा दिन गया, तो ये मान सकते हैं कि अभी ये बेहतरीन अवस्था तक पहुंचा है। मेंटली रिटायर्ड पर्सन की बात चल रही। 16 घंटे से ऊपर अगर वो रहे तो और बेहतर माना जाएगा। उसी प्रकार बाबा कहते ज्ञान है। तुम चेक करो तुम कितने समय के लिए आत्मिक स्थिति में रहते हो, उसे तुम अपना देखो, तुम हो कौन। जो आत्मिक स्थिति में नहीं है उसे कितना भी ज्ञान समझाओ कोई मतलब नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। दोनों के लिए कोई उपयोग नहीं, सुनाने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। क्योंकि न सुनाने वाला स्थिति में, न सुनने वाला स्थिति में, सब व्यर्थ है। इसलिए आज तक तुमने बहुतों को परिचय बांटे, ज्ञान दिया, परिचय दिया, प्रदर्शनी समझाई, पर तुम स्वयं आत्मिक स्थिति में नहीं थे, इसलिए कोई समझ नहीं पाया। तुमने मनुष्य को समझाया, आत्मा को नहीं समझाया। अगर तुम आत्मा को पर्चा देते तो 1 रुपए का पर्चा कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाप के भंडारी का है वो जरूर ज्ञान में आता, पर तुमने मनुष्य को दिया और धन भी व्यर्थ गवाया। बल तुम्हारे पॉकेट से हो या यज्ञ के पॉकेट से हो, सब धन तो बाप का है सूक्ष्म रूप से। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पहले अपनी अवस्था में आ जाओ। तुम बहुत कोशिश कर रहे हो दूसरों को उनकी अवस्था में लाने की, पर ये तुम भूल रहे हो तुम स्वयं उस अवस्था में नहीं हो, तो दूसरे उस अवस्था में कैसे आ सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। पहले तुम आओ, फिर वो आएंगे। तुम बिना अवस्था में आए उन्हें अवस्था में लाने की चेष्टा मत करो, पागलपन मत करो, अज्ञानता, मूढ़ता मत करो। ना भी कोई अवस्था में आ जाए चलेगा, पहले तुम आ जाओ। समझ की बात है, ये बड़ी बात है बाबा कहते। इसलिए पहली शिक्षा तुमने कहाँ तक धारण की है, कोर्स की शिक्षा तो बहुत मिली है। बाबा पूछते हमेशा कि अब तक ब्राह्मण जीवन जब से मिला है हुआ है, ऐसी कितनी श्रीमत है जो तुम्हारे अंदर अखंड धारण है, चेक करो। और ब्राह्मण जीवन पाकर ऐसी कितनी अज्ञानता मनमत परमत तुमने अपने अंदर भर के रखी है, चेक करो। जब ब्राह्मण जीवन नहीं है तो अज्ञान बहुत कम रहता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है ज्ञान की। पर जब ब्राह्मण जीवन मिला, कोर्स हुआ, उसके बाद मनमत और परमत से अज्ञानता आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलरेडी जो भटक रहा है माया उसे नहीं भटकाती, जो सही रास्ते पर चलना शुरू करता है माया उसे भटकाना शुरू करती है। इसलिए ज्ञान के बाद, कोर्स के बाद अज्ञानता आना स्वाभाविक है, बहुत जल्दी आती है अज्ञानता, जल्दी आकर्षित होती है तुम्हारी ओर मनमत परमत भटकन। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना इस रास्ते पर, तुम चेक करना ज्ञान में आने के बाद ऐसी कौन कौन सी बातें तुमने की जो श्रीमत के विरुद्ध है, चेक करना, तुम्हें हिसाब मिलेगा। ज्ञान से पहले भी इतनी नहीं की जितनी ज्ञान में आने के बाद की है, तुम हैरान हो जाओगे। समझ की बात है, इसलिए सावधानी से चलो। पहला पार्ट चेक करो, कहाँ तक पक्का किया मैं आत्मा हूं, कितने समय के लिए सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, चेक करो। किसी किसी की अवस्था इतनी ऊंची है कि योग में भी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रहते। अभी क्या कहे, ऊंचा ना कहे तो क्या कहे, बाबा के कमरे में बैठे हैं, योग कर रहे हैं, उसमें भी आत्मिक स्थिति नहीं है। बच्चे कहेंगे कि नहीं बाबा के कमरे में हम योग में आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आप आके चेक करो। बाबा कहते बैठो योग में, तुम स्थिर योग में बैठे, मैं अंडा पर पानी डालता हूं माथे पर, देखता हूं तुम्हारी स्थिति, अगर आत्मिक स्थिति में हो तो हिलोगे नहीं। समझ की बात है, बाबा कहते किससे शब्दों से खेल रहे हो, बाप से, बाप बाप है, तुम अपने कल्याण के बारे में सोचो, अपनी स्थिति को चेक करते रहो, तुम आत्मिक स्थिति में कितना हो, सदा के लिए आत्मिक स्थिति के कर्म बोल दृष्टि विचार वृत्ति बहुत अलग होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस की तो वो तो कॉमन है, आत्मिक स्थिति वाला कहा भी जाए वो अलग ही दिखेगा, अलग ही लगेगा, आत्मिक स्थिति है और कुछ नहीं। समझ की बात है, बाबा कहते इसलिए स्थिति पर ध्यान देना, पहला पाठ पक्का करना। पहले पाठ के बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आवश्यक है, बाबा कहते हैं पहला पाठ, उसी से कल्याण है। शिक्षा तो बहुत मिली, बाप ने कितनी शिक्षाएं दी है, हर बात का ज्ञान दिया है बाप ने, बाप ने हर बात का ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं पर तुम्हें समझना चाहिए ज्ञान को, तुम्हें लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। धारण नहीं करते हो, समझते नहीं, चिंतन नहीं करते, विचार सागर मंथन नहीं करते, जन्म से लेकर मृत्यु तक मन शरीर के सारा ज्ञान बाप ने दिया है, सतयुग से लेकर संगम तक बाप ने सारा ज्ञान दिया है, पर बच्चे कभी सोचे समझे चिंतन करे तो बुद्धि में आ जाएगा, पर बच्चे चिंतन नहीं करते। संसार का चिंतन करने के लिए सबके पास बहुत समय है, पर आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन, रामा का चिंतन करने के लिए समय नहीं है, ऐसी अवस्था हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान दो, जैसे सोल कॉन्शियसनेस है पहला पार्ट, उसी प्रकार दूसरा पार्ट है परमात्मा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। ईश्वर को कितना समझा है, बस नाम का समझा है या समझा है, अनुभव भी किया है? नाम का तो सारी दुनिया ने समझा है, अलग अलग नामों से, देवी देवताओं के नाम से परमात्मा की पूजा होती है, हर कोई अपने इष्ट को परमात्मा ही मानता है। अगर तुमने सिर्फ नाम का समझा है तो उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, समझ की बात है। इसलिए बाप को अनुभव करना बहुत आवश्यक है, अनुभव में जीवन है, अनुभव करो, वरना संग तो चलते रहोगे और अनुभव कुछ नहीं करोगे तो सब व्यर्थ चला जाएगा। अनुभव बहुत आवश्यक है। कहते तो हो सभी कि परमात्मा मिला है, उसका कोई लक्षण दिखता है आपने? परमात्मा को पाने का कोई लक्षण है क्या आप में? समझ की बात है। अगर लक्षण होगा तो सामने वाला मानेगा कि परमात्मा को पाया है। सबसे बड़ा लक्षण है सदा खुशी। परमात्मा को पाने वाला कभी उदास नहीं हो सकता इस जीवन में, कभी नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए उदास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है उसे कौन मिला है, क्या मिला है, वो जानता है। सदा खुश रहेगा, सदा मौज में रहेगा, सदा परम आनंद में रहेगा, जैसे भक्ति में संत रहते थे। संतों के चेहरे पर कभी उदासी नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने भक्ति में उस रूप से परमात्मा को अनुभव किया था, भले जो भी पार्ट हो। इसलिए उनका नशा था, पाना था सो पा लिया, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी घर बार की, संसार की। तुम पाकर अभी भी चिंतित हो, कैसे माने कि तुमने परमात्मा को पाया है? दुनिया भी सवाल पूछेगी कि अगर तुम्हें परमात्मा मिला है तो तुम यहां क्या कर रहे हो, उसके पास क्यों नहीं हो? हमें मिलता तो हम कब के पहुंच जाते, तुम संसार में क्या कर रहे हो फिर? अगर परमात्मा मिला है तो तुम खुश क्यों नहीं रहते? तुम्हारी स्थिति ऊंची क्यों नहीं है? बाबा कहते बोल से नहीं होता ना, बोल से कैसे चलेगा? प्रमाण दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ तो मानेंगे कि तुमने कुछ पाया है। प्रमाण नहीं और तुम ऐसे ही बोल रहे हो, कैसे माने? दुनिया यही कहेगी, कोई कोई तुम्हें यही कहेगा कि कल जाके तुम ये भी कह सकते हो कि तुम ही परमात्मा हो, तो क्या हम माने? प्रमाण चाहिए, समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। इसलिए जो गॉड कॉन्शियसनेस है, तुम कहते हो कि ईश्वर को तुमने पाया है, उसका प्रमाण बताओ। ईश्वर को पाने का प्रमाण एक ही है, सदा खुशी। बाकी बाबा कहते छोड़ो, सदा खुशी, उदासी कभी नहीं आ सकती। ईश्वर को पाने का प्रमाण है कि तुम्हारा मन संसार में नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। तुम संसार को भूल जाओगे अगर परमात्मा को पालोगे तो। अभी भी तुम्हारे बुद्धि में संसार चलता है। संत ऐसे ही चले गए ना घर से बाहर, क्योंकि परमात्मा मिल गया। परमात्मा मिलने के बाद कोई भी संसार में नहीं रह सकता, ना किसी की बुद्धि संसार में रह सकती है। संतों ने सबको भुला दिया, बीवी बच्चों को, पति पत्नी को, माँ बाप को, सबको भुला दिया। वो है लक्षण परमात्मा को पाने का। सब भूल गए बुद्धि से, सूक्ष्म में भी बुद्धि से भूले और साकार में भी वो कहा के कहा चले गए परमात्मा के निश्चय में। इसलिए कहने से कुछ नहीं होता, लक्षण दिखे, समझ की बात है। शायद तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, फूटी कौड़ी भी ना हो, पर नशा होगा परमात्म प्राप्ति का। शायद तुम्हारा शरीर सदा बीमार रहे, संकल्प निकट कर, पर नशा होगा परमात्मा को पाने का। शायद तुम्हारे घर बार में सदा झगड़े चलते रहे, पर नशा होगा परमात्मा को पाने का। शायद तुम्हें समय पर अन्न भी ना मिले खाने के लिए, पर नशा होगा, क्योंकि परमात्म नशा इन सबसे परे है, संसार से परे। अगर वो अभी भी नहीं चढ़ा है, तुमने नहीं पाया है, तुमने देखा भी नहीं उसे, तुमने बस देखने की कोशिश की बाबा मिलन में। तुम्हें समझा तो नहीं है, पर तुमने देखा भी नहीं है, बस कोशिश की है तुमने देखने की, कि सामने परमात्मा बैठा है। तुम वहम में मत रखो अपने आप को कि तुमने परमात्मा को पाया है, बाबा को पाया है, समझ की बात है। बच्चे ज्ञान को समझते नहीं, बस ऐसे ही चलाते रहते हैं जैसे मन हो, और फिर माया से, दुनिया से मार खाते हैं। माना दुनिया वाले उसके ऊपर कुछ न कुछ उनकी बातें रख देते हैं, फिर दुख लगता है। नशा होना चाहिए, जो नशा ब्रह्मा बाबा के पास था, मम्मा के पास था, जगदीश भाई जी के पास था, दादियों के पास था, नशा बाबा कहते हैं परमात्म प्राप्ति का। किसी को इतनी अनमोल चीज मिले और नशा ना आए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते इम्पॉसिबल है। इसलिए जो दूसरा सब्जेक्ट है परमात्म प्राप्ति, बाप की प्राप्ति, चेक करना। तीसरा सब्जेक्ट है ड्रामा, कहाँ तक एक्सेप्ट किया है। तुम्हारे मन के मुताबिक होता है तो कहते वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और मन के विरुद्ध हो तो रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। यही तुम्हारा ड्रामा का ज्ञान है क्या? ड्रामा ड्रामा है, जो किसी के भी मन के हिसाब से नहीं चल सकता, इतना पक्का पता है? तो तुमने कहाँ तक पक्का किया है कि यह ड्रामा है? समझ की बात है, कहने के लिए मत कहो कि यह ड्रामा है, समझ की बात है। बाबा कहते हैं जब अति बुरा होता है, संकल्प निकट कर रहे हैं, तब कह के दिखाओ वाह ड्रामा वाह, फिर कहेंगे कि ड्रामा के पट्टे पर तुम पक्के हो। जब अति बुरा होता है, सब लूट गया, घर बार परिवार नौकरी धंधा, फिर कह के दिखाओ वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह, उस समय चेहरा देखने लायक होता है, उसी से पता चलता है बाप का निश्चय बना, बाप पर का निश्चय और ड्रामा का निश्चय, ड्रामा पर का निश्चय। उसी क्षण चेहरा बदल जाता है तुम्हारा। इसलिए ड्रामा को कितना पक्का किया है तुम चेक करो। तुम बहुत बार अपने हिसाब से ही करते हो। बाप को तुम्हारा ड्रामा पता है, इसलिए बाप तुम्हें श्रीमत देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो नहीं करते हो। तुम वही करते हो जो तुम करना चाहते हो, माया के वश, मनमत परमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो सब माया के वश है, समझ की बात। इस बाबा कहते महावाक्य को बुद्धि में जितनी बार अंडरलाइन कर सकते हो अंडरलाइन करके रखना, जरूरी है। बाबा कहते ये बातें, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके संग में कभी नहीं रहना, बिगड़ जाओगे। जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं के संग में रहना, सुधर जाओगे। संग तारे कुसंग बोरे, समझ की बात है। तुम गुण देखना किसके अंदर कैसा है, फिर तुम डिसाइड करना कि किसके संग में रहना है और किसके संग में नहीं रहना है। तुम उन्हें बदलने की कोशिश करते हो पर खुद तुम ही उनके जैसा कब हो जाते हो और बह जाते हो तुम्हें भी पता नहीं चलता। इसलिए ये चेष्टा मत करो उन्हें बदलने की, तुम संग बदल दो। भल उन्हें दुख लगेगा, लगने दो। वो अगर अच्छे नहीं बनना चाहते तो तुम बुरे क्यों बन रहे हो, जरूरत क्या है? नहीं रहो उनके संग में, टूट जाएगा रिश्ता और क्या होगा, अर्जा नहीं। पर ऐसा रिश्ता किस काम का जो डुबोए, जो नरक में भेज दे, ऐसा रिश्ता किस काम का। उन्हें कहो चलो स्वर्ग में, सच्ची राह पर, नहीं चलते भटकने दो। इसलिए संग का ध्यान रखना, संग का ध्यान रखोगे तो सब सत्य रहेगा, सब भला रहेगा। तुम सभी आत्माएं श्रेष्ठ हो, सभी बच्चे श्रेष्ठ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी इस घड़ी जिनका पार्ट कुसंग का चल रहा है उनके संग में जाकर तुम बिगड़ जाते हो। सुसंग वाले पार्ट बोले हाँ, एक समय पर वो कुसंग का पार्ट भी सुसंग हो जाएगा उनका, पर अभी इस घड़ी तुम्हें उस कुसंग के साथ नहीं रहना है। बाबा आत्मा को कुछ नहीं बोल रहा है, पार्ट की बात कर रहा है, समझ की बात है। कोई अगर अच्छा नहीं बनना चाहता तो नहीं बने, तुम बुरे क्यों बन रहे हो? वो तुम्हें उनके जैसा बनाना चाहते हैं और जिद पर है ना, तुम भी जिद पर रहो कि तुम उनके जैसे बनो। वो जिद कर सकते तो तुम भी जिद करो कि तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास भी जिद है, समझ की बात है, समझ की बात है। कोई है किसी को कहता है शराब पियो, नशा चढ़ेगा। तुम कहो ये मुरली 5 बार पढ़ो, नशा चढ़ेगा। बस शब्द बदल दो, शब्दों का खेल है। बाबा कहते हैं समझते नहीं, तुम जल्दी बदल जाते हो, तुम उन्हें बदल नहीं लेते हो। उन्हें बदलो, तुम नहीं बदलो। तुम सुसंग में चल रहे हो ना, इसलिए ध्यान में रखना, जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं के संग में रहना। मनमत और परमत के संग में बेड़ा गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। श्रीमत का बड़ा ध्यान रखना। अच्छा बनने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बस अच्छे संग में रहो, अच्छा अपने आप बनेंगे। ब्रह्मा बाप के संग में रहे तो उनके जैसा अपने आप बनेंगे। किसी और के संग में रहे तो उनके जैसा बनेंगे। और संग बुद्धि से होता है। साकार रूप से संग नहीं होता, साकार रूप से बस एक प्रेजेंस होता है। संग तो बुद्धि का ही होता है, समझ की बात है। भल साकार से तुम क्लास में बैठे हो, मुरली सुन रहे हो, मिलन में बैठे हो, पर बुद्धि तुम्हारी बाहर भटक रही, तुम कुसंग में हो। और इसे विपरीत करे कि तुम बाहर बैठे हो लेकिन बुद्धि क्लास में है, तो सुसंग में हो। समझ की बात है, तुम हो कहा भी लेकिन तुम्हारी बुद्धि मधुबन में बैठी है, सुसंग में हो। बुद्धि से संग होता है, साकार से नहीं होता, ध्यान में रखना। करके देखो बुद्धि से, फरिश्तों का संग, देवताओं का संग, एडवांस पार्टी का संग, बुद्धि से एक हफ्ते के लिए देखो होता क्या है, तुम कैसे उनके जैसे बनते हो। इसलिए जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं के संग में रहना, जो श्रीमत तोड़ते हैं उनके साथ बात करना भी महापाप है, ध्यान में रखना। जो श्रीमत तोड़ते हैं उनके साथ बात करना भी महापाप है। तुमने श्रीमत नहीं तोड़ी, श्रीमत तोड़ने वाले से बात की, फिर भी महापाप के भागी बने, ध्यान रखना। ये मार्ग बड़ा अलग है, ये कार्य बड़ा अलग है। इसलिए जो गॉड कॉन्शियसनेस की बात है उसमें चेक करना, परमात्म अनुभूति कितनी की है, परमात्मा को कितना पाया है। सिंपल सा सवाल है, तुम्हारी बुद्धि में अगर सदा परमात्मा है, बाबा है, तो तुमने पाया है। बाकी तुम्हारी बुद्धि अगर संसार की ओर भटकती है, तुमने नहीं पाया है, तुम बस मिले हो, तुमने बस ऊपरी तौर से देखा है, सुना है, इससे ज्यादा तुमने कुछ नहीं किया। परमात्मा को पाने वाला परमात्म अनुभूति में पागल हो जाता है, ध्यान में रखना। उसकी बुद्धि संसार में रहेगी ही नहीं, वो पूरी रीति पागल हो जाएगा, पूरी रीति पागल। हॉस्पिटल में दाखिल करने जैसा परमात्मा को पाना कोई मामूली बात नहीं है। उसकी बुद्धि में एक सेकंड के लिए भी कोई और बात नहीं आ सकती संसार की या दुनिया की। समझ की बातें हैं। उसके कर्मों में बाबा होगा, वाणी में बाबा होगा, दृष्टि विचार वृत्ति में बाबा ही बाबा होगा और कुछ भी नहीं होगा। वो यही कहेगा जो होना है हो जाए संसार का, मुझे जो मिलना था मिल गया, बात समाप्त हुई, अभी जो होना है हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। वो तैयार रहता है एवर रेडी शरीर छोड़ने के लिए भी। आज इस घड़ी भी शरीर छोड़ना पड़े तो भी तैयार है, एवर रेडी है, क्योंकि जो पाना था सो पा लिया। समझ की बात है। वो सारा ड्रामा स्वीकार करेगा, सारा ड्रामा। बाबा कहते हैं चेक करो, जब तक तुम बाबा को नहीं पाते, गॉड कॉन्शियसनेस में नहीं जाते, तब तक तुम ड्रामा को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, ड्रामा को स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं है। ड्रामा को स्वीकार करना बहुत बड़ा अभ्यास है, ड्रामा को स्वीकार करना। तुम चेक करो, तुमने कहां तक एक्सेप्ट किया है। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। अगर ड्रामा को एक्सेप्ट किया है तो वाह ड्रामा वाह कह के दिखाओ, कह के दिखाओ। संकल्प नहीं कट कर रहे, पर तुम्हारे लौकिक में या अलौकिक में सबसे प्रियजन ने शरीर छोड़ा और तुम कह के दिखाओ हंसते हंसते, वाह ड्रामा वाह। दम है तो कह के दिखाओ, बाबा कहते हैं वाह बाबा वाह कह के दिखाओ। हिलोगे तो, जिनकी स्थिति नहीं है, तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगा, तुम रिजेक्ट करोगे। इतना तो आएगा, मेरे एब्सेंस में कैसे हुआ, कम से कम हम घर में तो होते, ये भी तो रिजेक्शन हुआ। तो क्या तुम्हारे प्रेजेंट में सब कराए ड्रामा? ड्रामा को क्या कहना चाहते हो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारे प्रेजेंट में सारी बातें हो? बाबा कहते हैं यही परीक्षा है तुम्हारी। समझ की बात है। देखिए बाबा ऐसी चीज है जो सब खोने के बाद मिलता है। जब तक सब तुम्हारे पास है तुम्हें बाबा नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उसमें अटकी है, तुम बाबा को नहीं पा सकते। जब तक अंशता भी तुम्हारी बुद्धि किसी में अटकी है तुम बाबा को नहीं पा सकते। बाबा को पाने के लिए पूर्णता बुद्धि संसार से निकाल के बाबा में लगानी पड़ती है, तब तुम्हें बाबा मिल जाएगा, वरना इम्पॉसिबल है, भूल जाओ तुम। अंत समय में सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, विनाश काल में, तब दुनिया कहेगी मेरा बाबा, क्योंकि मेरा कहने के लिए कुछ बचा नहीं उसके पास। इसलिए बाबा कहते हैं जीते जी सब बुद्धि से हटाओ, वरना इसी में फंसते रहोगे, संसार और परमात्मा, संसार और परमात्मा। न संसार हाथ लगेगा न परमात्मा को पा सकोगे, बीच में ही भटकते रहोगे। बाबा का नियम ही है, मुझे पाना चाहते हो तो सूक्ष्म रूप से बुद्धि से सब भूल जाओ और बस बुद्धि में मुझे रखो। या किसी चीज पदार्थ को छोड़ने की बात नहीं, बुद्धि से भूलने की बात है। समझ की बात है, जब तक जरा भी कचरा बाकी है, संसार कचरा है सारा, ध्यान में रखना, जरा भी कचरा है, परम पवित्र बाप नहीं मिल सकता, मुश्किल है। जरा भी मोह है संसार में, रिश्ते नातों में, तुम बाप को नहीं पा सकते। तुम अभी भी कोशिश ही कर रहे हो, इसलिए ये रास्ता देखो तो बड़ा कठिन है, लेकिन ध्यान से समझो तो बड़ा आसान है। मर्जी तुम्हारी, बस बीच में नहीं भटको, या तो संसार में जियो या परमात्म प्यार में जियो, मर्जी तुम्हारी। बस परमात्म प्यार में जीने के लिए अंदर संसार का कचरा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सुदामा के पास कुछ नहीं था, मुट्ठी भर चावल भी किसी और से लेकर आए, तब सब दिया। तुमने बहुत कुछ पकड़ के रखा है। बाबा कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम ही उसमें फंसे हो, बुद्धि से सब पकड़ के रखा है और अपने को अटका के रखा है उसमें, तुम्हें ही मुक्त कर रहा हूं उससे। समझ की बात है, आदि में भी भक्ति काल में द्वापर युग के बाद से तुम्हारी बुद्धि परमात्मा की तरफ लगे, इसलिए 60 साल के बाद चाबी निकाल के देते थे, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करते थे गृहस्थ आश्रम से। मर्जी तुम्हारी, अभी समय कौन सा है पता है, बचपन से चाबी निकाल के दे दो, अभी कोई उम्र नहीं बची है चाबी लेने की, बचपन से ही जन्म से ही चाबी किसी और को दे दो, अपने पास मत रखो, संसार में फंसोगे, माया है, ध्यान रखना। हाँ, बाप को नहीं पाना है तो कोई अर्जा नहीं, मृत्यु तक रखो और मृत्यु के बाद भी रखो अपने पास, भटकते रहो सारे धन में संपत्ति में संसार में। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते कोर्स तो पूरा हुआ ना, तुमने कहाँ तक पूरा किया अपना कोर्स, कोर्स तो ऐसे पूरा हुआ है पर तुमने कहाँ तक पूरा किया है, तुम चेक करो, तुमने कहाँ तक इसे धारण किया है, तुमने सुना है पर धारण नहीं किया है, धारण करो। संगम युग चल रहा है, समाप्ति का युग है, ड्रामा समाप्त होने जा रहा है, इसमें अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, अखंड याद करो, जरा समय मिला याद में बैठे, कर्म में भी याद, मुक्त है तभी भी याद, क्या बातें करनी अभी, क्या चर्चा करनी, क्या देखना और क्या सुनना, क्या बोलना, सबसे वैराग्य में आ जाओ, शांत बैठो और बाप की याद में स्थित हो जाओ, बस हुआ बोलना करना, यही तुम्हारी प्राप्ति है बाप की याद। ज्ञान भी सुन रहे हो याद के लिए, पर अगर याद नहीं कर रहे हो तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। थ्योरी सुनी जाती है प्रैक्टिकल के लिए, पर तुमने जीवन में कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, थ्योरी का क्या मतलब है। समझ की बात है, इसलिए कोर्स पूरा हुआ है, पर तुमने कितना पूरा किया है तुम चेक करो, तुम चिंतन करो, समझ से चलो बच्चे, ना समझ मत बनो, परवश होकर बुद्धि को हटाओ, वरना भटकोगे। साकार में रहते भी और शरीर छोड़ने के बाद भी भटकोगे, शब्द पर ध्यान देना। इसलिए अभी जब साकार में हूँ, ज्ञान मिला है, समझ मिली है, भटकन बंद करो। साकार में रहते मना शरीर में रहते, शरीर छूटा नहीं, जिनकी बुद्धि भटकती नहीं वो शरीर छोड़ने के बाद स्थिर हो जाते हैं। पर शरीर के जीवित होते, साकार में रहते जिनकी बुद्धि भटकती है वो शरीर छोड़ने के बाद भी भटकते हैं। इसलिए अभी स्थिर हो जाओ, बुद्धि को हटाओ। तुम नहीं जानते तुम कब शरीर छोड़ोगे, तुम्हारे पास कोई फिक्स डेट नहीं है। और अभी समय तो सबका आ रहा है, किसका समय कब आएगा कोई गारंटी नहीं है। बलबाप के बच्चे हो पर आत्मा रूप में हो, आत्मा कभी मरती नहीं, समझ की बात। बाप तो कहता है सदा साथ रहेंगे जब तक ड्रामा पूरा ना हो, पर हर किसी को ये नहीं कहता कि इसी तन में साथ रहेंगे, किसी और तन में भी साथ रह सकते। इसलिए संभल जाओ, जाग जाओ, जागृत हो जाओ और स्वयं का कोर्स स्वयं पूरा करो। जो बाप ने सिखाया है ज्ञान, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, बाप को समझो, बाप की याद में स्थित हो जाओ, ड्रामा को पूरा स्वीकार करो, संगम के समय को समझो, अपने विकर्मों को विनाश करो और संसार से मुक्त होकर नए संसार की ओर चलो। कोर्स पूरा हो गया, यहां से जाना है अपने घर शांति धाम, वापिस आना है सुख धाम। इस संसार में जान नहीं अटकाओ, ये समाप्त तो होने वाला संसार है। दिया जब बुझने के समय पर आता है तो और तेज हो जाता है, ध्यान रखना। ये तेज हुआ है संसार, इसका मतलब इसकी तेजी बढ़ेगी ये नहीं है, ये बुझने पर आया है। इससे प्रभावित नहीं होना। बाबा कहते हैं ना, माया का पौं कितना बड़ा है। टेक्नोलॉजी हो, खान पान के पदार्थ हो, कपड़ा हो, वस्तुएं हो, घर गाड़ी हो, व्यवस्था हो, तुम इसमें फंसो नहीं, इससे बाहर निकलो, समझ की बात है। कलयुग का कोई संस्कार नहीं बनाना किसी भी व्यवस्था का, अपना संस्कार सतयुग का बने, परमधाम का बने, कलयुग की व्यवस्था का संस्कार ना बने, समझ की बात है। ये तो बाबा कहते आज है कल नहीं है ये व्यवस्था, ये कोई व्यवस्था है सतयुग में देखो। इसलिए उस संसार की ओर चलो, इस संसार से मन बुद्धि को हटाओ और उस संसार के संस्कार धारण करो, अपने को बाप समान बनाओ, ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान, शिव बाप समान। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की शिक्षाओं पर चलते रहना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत सदा धारण करते रहना और अपने को बाप समान अनुभव करते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।
द्रुहाणी पापं पदं गुणा पदं देवी पदं 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 गुणा यात यात
गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते
अच्छा वाह वाह वाह
ओम शांति।